मलिक मोहम्मद जायसी, दोहा 8 से 13, नागमती विरह। चढ़ा असार गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा, धूम साम धौरे घन धाय, सेत धुजा बगपांति दिखाए। खडग बीज चमके चहु ओरा, बुंद बान बड़ी सही घन घोरा, अद्रा अलागी बीज भुई लेई, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा। ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंट उबारू मदन हो ढेरी, दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजु घट रहे न जीयु। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, मोहि पिय बिनु को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर। चूर्णिका घन अर्थात बादल, गाजा गर्जा, दुंद द्वंद, धूम धुएं के रंग, धौरे श्वेत, बगु बगुला, खडग बिजू बिजली रूपी तलवार, फेरी ओर उबारू बचा रक्षा कर, दादुर मेढक, अद्रा एक नक्षत्र आषाढ़ कृष्ण में आद्रा बरसता है, इसी नक्षत्र में किसान अपनी भूमि में बीज बोते। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश नागमती वियोग वर्णन से अवतरित है। इसके प्रणेता मसनवी शैली में काव्य रचना करने वाले शिक्षावत क्रांतिदर्शी प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक भक्तिकाल के रत्न स्वर्गीय मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रसंग नागमती के वियोग वर्णन के अंतर्गत जो 12 मासा अर्थ उसका यहाँ से प्रारंभ हुआ है, वह 12 मासा अषाढ़ से प्रारंभ होता है। इन पंक्तियों ने कवि अषाढ़ में होने वाले ऋतु परिवर्तन के साथ साथ नागमती की विरहावस्था का भी वर्णन किया है। व्याख्या अषाढ़ का महीना आ गया, मेघ आकाश में गरजने लगे, विरहा ने युद्ध की तैयारी की है और उनकी सेना आ पहुंची है। धुएं के से रंग के काले और श्वेत बादल सैनिक की भांति आकाश में दौड़ने लगे और उनके मध्य उड़ने वाले बगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखाई देने लगी। मेघों की बिजलियां तलवार सी चमकने लगी, मेघ बूंद रूपी वानों की घनघोर वर्षा करने लगे। चारों ओर से घटाए झुक आई है, हे कंत मदन ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र ही आकर उससे मेरी रक्षा करो। दादुर मोर कोयल और पपीहे बोलकर मेरे कष्टों को और बढ़ा रहे हैं। बादल से चिंगारियां गिर रही है, इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब घट में प्राण नहीं रहेगा। पुण्य नक्षत्र सिर पर के ऊपर आ गया है, मैं अकेली हूँ, मेरा स्वामी यहाँ नहीं है। इस दशा में मेरे मंदिर को कौन छवाएगा जिससे कि इस बरसते पानी में भीगने से बच सकूँ। आर्रा नक्षत्र लग गया और संपूर्ण पृथ्वी में जल का लेवा लग गया, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी जलयुक्त हो गई। हाय मैं अकेली हूँ, मुझे बिना प्रियतम के कौन आदर देगा। जिनके प्रियतम घर हैं वे सुखी हैं, उन्हीं की गौरव गर्व है, मेरा तो प्यारा प्रियतम बाहर है जिससे मैं अपना सारा सुख भूल गई। विशेष पहला, नागमती के वियोग वर्णन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागमती अपना रानीपन भूलकर सामान्य स्त्री के समान व्यवहार करती है। वह भी प्रियतम के बिना अषाढ़ के लगते ही घर का छाजन आदि ठीक करने की चिंता में लीन है। प्रियतम का अभाव वह सभी क्षेत्रों में अनुभव करती है। दूसरा, जायसी ने नक्षत्रों का जो क्रम पद्यावत के इस प्रसंग में दिखाया है उससे यह ज्ञात होता है कि उन्हें इसका पर्याप्त ज्ञान था। आर्द्रा नक्षत्र अषाढ़ कृष्ण में बरसता है, उसी के बरसने पर किसान खेतों में बीज बोने लगते हैं। आर्द्रा के पश्चात पुनर्वसु अषाढ़ शुक्ल में है तथा उसके बाद पुष्य श्रावण कृष्ण पक्ष में लगता है। अलंकार अनुप्रास तथा रूपक। सावन बरिस मेह अति पानी, भरनी पड़ी हो बिरह झुड़ानी, लागू पुनर्वसु पीयू न देखा, भई बाउड़ी कहत कंत सरेखा, रकत के आंसू पड़े भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहुती, सखिन रचा पीयू संग हिंदोला, हरियरी भूमि कुसुम भी तन चोला, हिय हिंदोल जस डोले मोड़ा, बिरह झुलावे देई झकझोड़ा, बात असूझ अताह गंभीरी, जीव बाउड़ भा फिरे भंगी भीरी, जग जल मूड़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु ठाकी, पर्वत समुद्र आगम बिच बीहर, बन बन ढाक, किमिके भेटो कंत तोम, न मुहि पाओ न पाक। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग, जायसी ने सावन महीने की विरह अग्नि का वर्णन किया है। व्याख्या, सावन के महीनों में बादलों से खूब पानी बरसा, मूसलाधार जल बरस रहा है जिसके कारण सब वनस्पतियां हरी भरी होकर पल्लवित हो रही हैं, लेकिन मैं विरह में सूख रही हूँ। पुनर्वसु लग गया अर्थात अषाढ़ का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया, अब तो प्रियतम को आ ही जाना चाहिए था, क्या प्रियतम ने उसे नहीं देखा, ठीक लौटने का समय हो गया। वह चतुर प्रियतम अब तक कहाँ है, मैं यह सोच सोच कर बावली हो रही हूँ। रक्त के आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं, वही मानो वीर बहुतियों के रूप में रंग रहे हैं। मेरी सखियों ने अपने प्रियतमों के साथ झूलने के लिए हिंडोला डाला है, हरी भरी भूमि को देखकर उनका चोला हृदय भी कुसुम भी हो रहा है। तात्पर्य यह कि इस वर्षा ऋतु को हरियाली ने उन्हें प्रियतम के रंग में ऐसा रंग दिया है कि वे उसी के रंग में मस्त हैं, परंतु मेरा हृदय तो हिंडोला की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, बिरह झकोरे देखकर उसे झुला रहा है। चारों ओर के मार्ग असूझ अथाह तथा गंभीर है, चित्त पागल सा होकर गंभीरी के समान झूम रहा है। जहाँ तक दृष्टि जाती है चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है, समस्त पृथ्वी जल में डूबी हुई है। उस अपार जल राशि में मेरी नाव बिना खेने वाली ठहरी हुई है, अर्थात उसे पार लगाने वाला मेरा प्रियतम आज यहाँ नहीं है। पर्वत, अगम समुद्र, बिहार वन तथा धाक के जंगल मेरे और प्रियतम के बीच में है। प्रियतम, इन सबको पार करके मैं तुझसे कैसे मिलूँ? ना ही मेरे पाँव ही हैं और न पंख। तात्पर्य यह कि या तो मुझ में इतनी शक्ति होती कि मैं उन पर्वतों और समुद्र आदि को पार करके तुमसे मिल पाती, या मेरे पंख ही होते जिससे उड़कर तुम तक पहुंच पाती। यदि ऐसा होता तो आज यह कष्ट न उठाना पड़ता। विशेष लागू पुनर्वसु सोरखा इस पंक्ति के द्वारा नागमती एक बड़ी ही मार्मिक बात कहती है। वह कहती है कि पुनर्वसु लगा पर प्रिय ने उसे नहीं देखा, नहीं तो मेरे पति चतुर हैं, वे इसका संकेत समझकर अवश्य लौटाते। अलंकार, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास। भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अधियारी, मंदिर सून पियू अंते बसा, सेज नागनी फिरी फिरी दशा, रहो अकेली गहे एक पाती, नैन पसारी मरो ही अब भाती, चमक बीज घन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरिसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवही जसी ओरी, पुरबा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास भई तस झूरी, धनी सूखे भरे भादो माहा, अब हुन आए नहीं सिचन ही नाहा, जल थल भरे अपूर, सब धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाह मह, दे पूरत पियतेक। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग, भादो की अंधेरी रजनी से भयभीत होकर नागमयी प्रियस के लौटने का आग्रह कर रही है। व्याख्या, भादो का महीना नागमती को और भी भयानक प्रतीत होता है। उसकी अंधेरी रात देखकर वह व्याकुल होती और कहती है कि स्वामी के बिना यह भयानक अंधेरी रात कैसे कटेगा। स्वामी के परदेश में होने से मकान सूना पड़ा है, सैया सर्पनी की भांति दिखलाई पड़ती है, बिजली चमक रही है, बादल गरज गरज कर डरा रहे हैं, विरह काल के समान प्राणों को त्रसित कर रहा है, मेघा नक्षत्र में झकोरों के साथ बारिश हो रही है, मेरे दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा औलाती के समान बह रही है। मैं ऐसे भादो के महीने में भी, जबकि संपूर्ण जीव प्रसन्न और पेड़ पौधे हरे भरे हो उठते हैं, सुख रही हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी ने अब भी अपने दर्शन रूपी जल से मुझे नहीं सींचा है। पूर्वा नक्षत्र शुरू हो गया है, संपूर्ण भूमि जलमयी बन गई, किंतु मैं अर्क और जवासे के समान सूख रही हूँ। संपूर्ण जलाशय और स्थल जल से भर गए हैं, आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिले हुए दिखाई पड़ते। हे स्वामी, मैं अथाह युवावस्था रूपी जल में डूब रही हूँ, आप मुझे डूबती हुई को सहारा दीजिए। विशेष, पहला विप्रलम्ब श्रृंगार और दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। लाग कुआर नीर जग घटा, अबहू आओ कंट तन लता, तो ही देख पियू पलुहे कया, उतरा चित्तु बहुरी करु मया, उआ अगस्त हस्ति घर गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिहा पियू पुकारत पावा, स्वाति बुंद चातक मुख पड़े, सीप समुद्र मोती सब भरे, सर्वत सवड़ी हंस चली आए, सारस कुड़लही खंजन दिखाए, भा पर गास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, बिरह हस्ति तन साले घाई, करे चीत चुर बेगी आए, पिए बाजहू गाजहू होय सदूर। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग, क्वार मास में नागमती कहती है, विरह हाथी होकर उसे सता रहा है, प्रियतम सिंह होकर उसकी रक्षा करे। व्याख्या, क्वार मास प्रारंभ हो गया है, वर्षा का काल चारों ओर कम होने लगा है। इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी को याद कर रही है। हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत ही शिथिल पड़ गया है, वह आप ही के दर्शन से पनप सकता है। उत्तरा और चित्रा नक्षत्र भी आ गए, परंतु मेरा चित्त उतरा हुआ है, एक बार फिर दया की दृष्टि करो। मछला अपने प्रिय चित्रा को पाकर और पपीहा अपने स्वामी स्वाति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अगस्त तारा उदय हो रहा है, हाथी बादल के समान गरजने लगे, राजा लोग घोड़ों पर जीने कसकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, स्वाति नक्षत्र भी आ गया है, पपीहे की प्यास भी बुझ गई है, समुद्र के सीप भी मोतियों से भर गए, सरोवरों का हंस भी आ गए, सारस पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे, खंजन पक्षी दिखलाई पड़ने लगे, चारों ओर प्रकाश भी होने लगा, वन में कांस भी फूलने लगे। पर हाय, मेरे स्वामी अब भी न लौटे और परदेश ही में भूल गए। हे प्रिय, बिरह रूपी हाथी शरीर को सुख दुख दे रहा है और हृदय को घायल करके चकनाचूर कर देना चाहता है, आप शार्दुल के समान गर्जना करते हुए शीघ्र मेरे पास आ जाइए। अलंकार, वृत्यानुप्रास दोहे में रूपक। कार्तिक सरस चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी, 14 कड़ा चांद परगासा, जानहु जरे अब धरती अकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद भयऊ मुहिराहू, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंठ पियारा, अब हुठ निथुर आओ एहि बारा, पर्व देवारी होई संसारा, सखी झूमक गा वही अंग मोरी, हौ झुड़ाई बिछुड़ी मोरी जोड़ी, जेहि घर पियुसो मनोरथ पूजा, मो कह बिरही सवती दुख दूजा, सखी मानो त्यौहार सब गाई देवारी खेल, हौका गावे कंट बिनु राही छार सिर मेल। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग, जयसी ने कार्तिक महीने और उससे उत्पन्न नागमती की विरह दशा का वर्णन किया है। क्वार मास भी समाप्त हो गया, कार्तिक का महीना लग गया, शरद ऋतु की निर्मल चंद्रमा भी दिखाई पड़ने लगी। ऐसी दशा में नागमती सोचती है, संपूर्ण संसार सुखी हो रहा है, लेकिन मैं अकेली विरह दुख से जल रही हूँ। चंद्रमा 14 कलाओं से युक्त हो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो संपूर्ण पृथ्वी और आकाश उससे जल रहे हैं। सैया भी मेरे शरीर और मन को जला रही है। औरों के लिए तो वह चंद्रमा सुखदायी है, लेकिन मेरे लिए राहु के समान दुखदायी है। यदि प्रिय घर में नहीं होता है तो चारों दिशाएं अंधेरी और सूनी दिखाई पड़ती है। हे निष्ठुर स्वामी, अच्छा हो यदि आप भी आ जावे, क्योंकि सब लोग दिवाली मना रहे हैं। मेरी सखियां झूक गायन विशेष गा गा कर प्रसन्न हो रही है, लेकिन मैं स्वामी से अलग होने के कारण सूख रही हूँ। जिनके पति घर हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो रही है, लेकिन मैं तो एक तो विरह दुख से और दूसरे सापल्य ज्वाला के दुख से अत्यंत सतापित हो रही हूँ। सब सखियां गा गा कर और खेल कूद कर दिवाली का त्यौहार मना रही है, लेकिन पति योग में कैसे गाना गाऊँ। मैं तो दुखित होकर सिर में धूल डाल रही हूँ। विशेष उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण और विप्रलंब श्रृंगार अलंकार उत्प्रेक्षा। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैन जाए कि मिगाधी, अव यही बिरह दिवस भाराती, जड़ो बिरह जंस दीपक बाती, कांपा हिया जनावे सीयु, टौटे जाई होई संग पीयु, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेई गानाहु, पलती न बहुरा गा जो बिछोई, अबहु फिरे फिरे संग रोई, ब्रज आगिन बिरहिन ही जाड़ा, सुलगी सुलगी दगधे भय छाड़ा, यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भसमंतु, पियसो कहेयु सदे सड़ा, हे भवड़ा एकाग, सौधनी विरहे जरी मुई, तेहिक धुअल हम हलाग। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग पूर्ववत व्याख्या। अगहन मास का आरंभ हो रहा है, दिन छोटा और रात बड़ी हो रही है। विरहनी स्त्रियों की दिन की अपेक्षा रात अधिक दुखदारी होती है। तदनुसार नागमती कहती है, स्वामी के वियोग में रात्रि बहुत कठिनता से व्यतीत होती है। मैं उसी विरह दुख से उसी प्रकार जलती रहती हूँ जिस प्रकार दीपक में बत्ती जला करती है। शीत से मेरा हृदय कांप रहा है, यह शीत तभी दूर हो सकता है जबकि स्वामी साथ में हो। सब स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हो रही है, लेकिन मैं किस सुंदरता को सवारूं, क्योंकि मेरी सुंदरता तो स्वामी के वियोग में नष्ट हो गई है। स्वामी जब से गए तब से लौटे नहीं, अगर वे अब भी आ जावे तो मेरा रंग रूप पुनः पूर्व का रूप धारण कर सकता है। विरह अग्नि वज्र के समान मेरे हृदय को जला रही है, लेकिन वह भी एकदम प्रदीप्त होकर नहीं जलाती जिसमें मेरा कष्टों का एक क्षण में अंत हो जाए। वह धीरे धीरे मंद उष्णता से जलती है जिसमें मेरा कष्ट अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा है, लेकिन मालूम होता है कि स्वामी को इस दुख का अनुभव नहीं है। वह सुसुप्तावस्था विरह मेरे जीवन को धूल में मिलाए दे रहा है। हे भौड़ा हे कौआ, तुम लोग जाकर स्वामी से मेरा संदेश कहो कि नागमती तुम्हारे विरह दुख में जलकर मर गई है, और उसकी अग्नि से जो धुआं निकला है उसी के लगाने से हम लोगों का शरीर काला हो गया है। विशेष विप्रलंब श्रृंगार। दूसरा, अपने जलने की समानता नागमती दीपक पाती से कर रही है, इसलिए उपमा सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश है। तीसरा, पिय से लाग में भावनाओं की तीव्रता और उन्माद की अवस्था है। समाप्त।